नमस्कार, सांझा विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मोनिका। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सांझा विरासत के आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत कोने में लेके जाने वाले हैं, यानी केरला, गॉड्स ओन कंट्री, वहां लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय है सांझे विरासत का मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स, यानी कि कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू दक्षिणी राज्य केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है, यानी मार्शल आर्ट। संभवतः सबसे पुरानी अस्तित्ववान युद्ध पद्धतियों में से एक कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू को अंग्रेजी में एक उपाधि मिली है, मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स, जिसका अर्थ है सभी युद्ध कलाओं की माँ, यानी जननी होना। ये केरल में और तमिलनाडु और कर्नाटक से सटे भागों के साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय के बीच काफी ज्यादा प्रचलित है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे नायर, एझावा द्वारा किया जाता है। दुनिया की प्राचीनतम सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला के रूप में मानी जाने वाली कलरीपयट्टू का विकास केरल में हुआ था। केरल के गौरव के रूप में प्रशंसित ये युद्ध कला दुनिया भर में सम्मानित है। इसमें प्रशिक्षण की शुरुआत पूरे शरीर के तेल मालिश यानी ऑयल मसाज से की जाती है, और ताकि शरीर ढीला और लचीला बने, चाट्टम यानी कूद, ओट्टम यानी दौड़, मरीचिल यानी कलाबाजी जैसी गतिविधियां भी इस युद्ध कला के अभिन्न अंग हैं। तलवार, कटार, भाला, मुगदर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य है मन और शरीर के बीच चरम सामंजस्य की स्थापना। कलरीपयट्टू का दूसरा लक्ष्य है देशी औषधि विद्या में पारंगत होना। कलरी धार्मिक आराधना के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि पूरा कोर्स होने के बाद प्रशिक्षु को ऑयल मसाज करना पड़ता है और शरीर का उपयुक्त आकार कायम रखने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ता है। कलरीपयट्टू, कुछ लोग इसे कलरीपयट भी कहते हैं, इसमें हमले, पैर से मारना, मल युद्ध, पूर्व निर्धारित तरीके, हथियार के जखीरे और उपचार के तरीके शामिल हैं। इसके क्षेत्रीय स्वरूप केरल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वर्गीकृत है। ये मलयालियों की उत्तरी शैली, तमिल की दक्षिणी शैली और भीतरी केरल से केंद्रीय शैली। उत्तरी कलरीपयट कठिन तकनीक के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दक्षिणी शैली मुख्यतः नर्म तकनीकों का अनुसरण करती है। हालांकि दोनों प्रणालियां आंतरिक और बाह्य अवधारणाओं का उपयोग करती रहती है। कलरीपयट्टू के कुछ युद्ध अभ्यासों को नृत्य में उपयोग किया जा सकता है, और वो कथकली नर्तक जो युद्ध कला को जानते थे वे स्पष्ट रूप से अन्य दूसरे कलाकारों की तुलना में बेहतर थे। कुछ पारंपरिक भारतीय नृत्य स्कूल अभी भी कलरीपयट्टू को अपने व्यायाम नियम के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं। आपने संक्षिप्त में ये तो जान लिया कि कलरीपयट्टू क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया, मगर आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द कैसा है या इस शब्द का मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। पयट्टू, कलरीपयट्टू शब्द दो शब्दों की तत्पुरुष संधि है। पहला कलारी, जिसका अर्थ होता है विद्यालय या व्यायामशाला, और दूसरा पयट्टू, जिसे पायुट्टका से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है युद्ध, व्यायाम या कड़ी मेहनत करना। इस धारणा को गलत साबित करते हुए कि युग्म रूप में ये शब्द उतने ही प्राचीन समय से प्रयोग हो रहे हैं जितने की कलारी और पयट्टू एकल रूप में, एक अप्रकाशित मलयालम शब्दकोश ये बताता है कि इस शब्द युग कलरीपयट्टू का प्राचीनतम प्रयोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उल्लूर एस परमेश्वरा अय्यर के नाटक अम्बा में हुआ था। तब संभवतः इस युद्ध कला ने वो स्वरूप धारण कर लिया होगा जिसके समरूपी शैली में ये आज विद्यमान है। एमडी राघवन ने सुझाव दिया है कि कलारी संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जबकि बुर्रो ने आमतौर पर स्वीकार किया है कि इसका मूल शब्द द्रविड़ शब्द खला यानी जमीन पर पीटना से उधार लेकर बना है। कलरीपयट्टू व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए त्वरित सजगता विकसित करने तथा लाठी, खंजर, चाकू, भाले, तलवार, ढाल आदि जैसे विभिन्न हथियारों पर कुशल महारत हासिल करने के उद्देश्य से परिकल्पित अभ्यास शामिल है। कलरीपयट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक माना जाता है। तभी तो मैंने इसे कहा था मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स। इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल राज्य में हुई। ऐसी मान्यता है कि कलरीपयट्टू को स्वयं भगवान शिव ने बनाया और इस कला का ज्ञान उन्होंने सप्तऋषि अगस्त्य को दिया, जिन्होंने इस कला की मदद से दक्षिणी कलरीपयट्टू का विकास किया। इसी विद्या को आज के युग में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस विद्या के असली जनक थे। उन्होंने इस विद्या के माध्यम से ही चारूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। इसी विद्या के जरिए उन्होंने कालिया नाग का भी वध किया था। देखिए ना, अब अलग अलग तरीके से लोगों ने इसकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताए हैं, अलग अलग कहानियां बताई हैं। इतना पुराना है ये, इतना प्राचीनतम है ये कि हमें खुद नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। मौलिक रूप से मार्शल आर्ट दक्षिण भारत में विकसित हुई। अगस्त्य मुनि एक छोटी कद काठी के साधारण से दुबले पतले इंसान थे, लेकिन वे हरदम भ्रमण करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट की रचना खास तौर पर जंगली जानवरों से लड़ने के लिए की थी। उस समय इस क्षेत्र में काफी तादाद में शेर घुमा करते थे। अब तो हम उनकी गिनती भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ 1100 शेर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने यहाँ शेरों की संख्या हजारों में थी और उनके साथ कई तरह के हिंसक व खतरनाक जंगली जानवर भी पाए जाते थे। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने जंगली जानवरों से लड़ने का एक तरीका विकसित किया। मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया, तो आप उससे कैसे निपटेंगे? अगर आप गौर से देखें तो कलारी ने अपना स्वरूप अभी तक वैसा ही रखा हुआ है। यहाँ इंसानों से लड़ने की कला नहीं है, इंसान के साथ लड़ने की बात तो इसमें बाद में जुड़ गई। उन्होंने ये मार्शल आर्ट कुछ गिने चुने लोगों को सिखाई ताकि वे लोग भ्रमण या यात्रा के दौरान जंगली जानवरों से निपट सके। लेकिन वो कला आज तक जीवित है। आज भी कुछ स्कूल अगस्त्य मुनि को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी परंपरा से खुद को जोड़ते हैं। दरअसल हमने कलारी को मनुष्य से लड़ने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि जंगली पशुओं से सुरक्षा करने के साधन के रूप में देखा था। जब भारत से लोग चीन जाने लगे तो हिमालय लांघते ही उनका सामना ऐसे जंगली जानवरों से हुआ जो यात्रियों पर हमला करने की ताक में रहते थे। ऐसे में उन्होंने जंगली पशुओं के हमले से निपटने के लिए जो कला सीखी थी उसका प्रयोग जंगली मनुष्यों के विरुद्ध लड़ने में किया जाने लगा। एक बार जब उन्होंने इस कला का इस्तेमाल मनुष्य के खिलाफ लड़ने में करना शुरू कर दिया, फिर आप देखेंगे कि उस सामरिक कला में खासा बदलाव आना शुरू हो गया। भारत से चीन और उसके आगे दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसका रूप बदलता गया। भारत में जहाँ या झुक कर या दुबक कर लड़ी जाने वाली कला थी, वहीं चीन जाते जाते इसने सीधे खड़े होकर लड़ने वाली कला का रूप ले लिया। इस तरह से कलारी वहाँ एक अलग तरह की रूपरेखा के साथ विकसित हुई। जब आप मनुष्य से लड़ते हैं तो मरने या मारने की नौबत आ जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी रुकने वाला नहीं। जबकि जंगली पशुओं के साथ ऐसा नहीं है, वो आप पर इसलिए हमला करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप उनका भोजन है। लेकिन जब आप उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं कि आपको पाना मुश्किल है, तो वह दूर चले जाते हैं, वह किसी आसान भोजन की खोज में चले जाते हैं। फिर इसी वजह से आपको किसी का भोजन बनने से बचाने वाली ये मार्शल आर्ट अपने आप इस हद तक रूपांतरित हुई कि किसी की हत्या की जा सके। इस बदलाव को आप कलारी से कराटे तक के सफर में साफ देख सकते हैं। तभी तो मैंने कहा था मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स। इस देश दुनिया में जितनी मार्शल आर्ट्स है ना, वो सब कलरीपयट्टू से जन्मी है, यानी कलरीपयट्टू उन सब की जननी है। कुछ समय बाद भारत में भी इंसान से लड़ने के लिए इस कला का उपयोग किया जाने लगा। बावजूद इसके इस कला में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, बस समय के साथ इसमें हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। अगर आप गौर से देखें तो मनुष्यों से लड़ने के लिए कलारी कराटे से बेहतरीन कला नहीं हो सकती, क्योंकि कराटे में दोनों पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। कलारी में आप झुक कर नीचे देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल हमने कलारी को मनुष्य से लड़ने के साधन के रूप में कभी देखा ही नहीं, बल्कि जंगली पशुओं से सुरक्षा करने के रूप में देखा था। और शायद इसीलिए इस तरह से इसकी स्टाइल है, इसी तरह से इसका डिजाइन है। कलारी ने कराटे का रूप ले लिया, भारत में जहाँ ये झुक कर या दुबक कर लड़ी जाने वाली कला थी, वहीं चीन जाते जाते ये सीधे खड़े होकर लड़ने वाली कला का रूप बन गई। कलारी के महान अध्यापकों में अगला नाम परशुराम का आता है। तभी तो मैंने कहा था, अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किंवदंतियाँ। देखिए, अभी तक हम जानते थे कि शिव इसके जनक थे, कुछ ने कहा श्री कृष्ण इसके जनक हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगला नाम आया है परशुराम का। उन्होंने सिर्फ इस अद्भुत सामरिक कला के बल पर अकेले ही कई सेनाओं का संहार किया। परशुराम की देखरेख में इस कला की शिक्षा मालाबार के उत्तर में आगे बढ़ी, जबकि अगस्त्य मुनि द्वारा प्रेरित कला दक्षिण से आई। परशुराम की शिक्षा प्रणाली में सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाथ से चलाए जाने वाले शस्त्र, फेंकने वाले शस्त्र के साथ कई तरह के अन्य शस्त्र भी शामिल हैं। जबकि अगस्त्य मुनि की प्रणाली वाली सामरिक कला बिना शस्त्रों के विकसित हुई, जहां सब कुछ हाथों से होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कलरीपयट्टु नामक इस विद्या को भगवान परशुराम एवं सप्त ऋषि अगस्त्य ही देश के दक्षिणी भाग में लेकर आए थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में महारथी थे, इसीलिए उन्होंने उत्तरी कलरीपयट्टु या वडक कलरी विकसित किया। जूडो, कराटे और कुंफू, टाइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट कलरीपयट्टु के आगे सब पेल माने जाते हैं। इस बात की हैरानी होती है कि चीन ने भारत से कलरीपयट्टु के मूव चुराए हैं। ये बात भी हैरान करने वाली है कि कितने पुराने समय में विकसित की गई ये विद्या आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग रूप में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है। माना जाता है कि ये भी एक भारतीय की ही देन है, बोधि धर्मन। आपने शायद इनका नाम या जिक्र कहीं न कहीं जरूर सुना हो। बोधि धर्मन दक्षिण भारतीय तमिल राजवंश पल्लव वंश के राजकुमार थे, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने कलरीपयट्टु की विद्या प्राप्त की। उन्होंने ही शाओलिन की स्थापना की। बाद में पता चला कि बोधि धर्मन एक आयुर्वेदाचार्य भी थे। यहाँ तक कि चाय की खोज भी उन्होंने की थी, ऐसा हमें जानने को मिलता है। कलरीपयट्टु के साथ साथ बोधि धर्मन सम्मोहन में भी महारथी थे। चीन में उनके कुछ शिष्यों ने उन्हें जहर दे दिया। वह ये बात जानते थे कि उनके शिष्य उन्हें जहर दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने उसे ले लिया। इसके उपरांत चीन के लोगों ने कलरीपयट्टु को मार्शल आर्ट का नाम दे दिया। गाए जाने वाले लोकगीत लगभग 3000 साल पहले कलरीपयट के सृजन का श्रेय हिंदू देवताओं को देते हैं। एक्सहेटर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिलिप जर्रिली कलरीपयट पर पश्चिम के कुछ अधिकृत जानकारों में से एक है। उनका अनुमान है कि ये कला कम से कम 12वीं सदी तक पुरानी है। इतिहासकार एलम कुलम कुंजन पिल्लई कलरीपयट के जन्म का श्रेय 11वीं शताब्दी में चेर और चोल राजवंशों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध को देते हैं। ये कला कलारी के माध्यम से प्रचारित की गई, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति के आने के पहले शिक्षा के सक्रिय केंद्र हुआ करती थी। आज भी चल रहे ये संस्थान उस समय छात्रों को एक जगह एकत्रित होकर विभिन्न विषयों, गणित, भाषा, खगोल विज्ञान और विभिन्न नाट्य कलाओं पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देते थे। युद्ध कला को पयट्टु कलारी में सिखाया जाता था, जिसका अर्थ है युद्ध कला विद्यालय। कलरीपयट्टु 9वीं सदी में और विकसित हो गया और नायर समुदाय, जो केरल के योद्धा थे, इसका अभ्यास राजा और राज्य की रक्षा के लिए करते थे। 11वीं और 12वीं सदी में केरल छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, जो आपस में मल्ल युद्ध लड़ा करते थे। इन द्वंद युद्धों या अंकम को चेकावर द्वारा एक अंकथाट नाम के 4 से 6 फीट ऊंचे एक अस्थाई मंच पर लड़ा जाता था। नगर शासक की सेवा के लिए युद्ध कला का अभ्यास करने का अधिकार और कर्तव्य अधिकांशता नायर और एझावा के साथ जुड़ा था। उत्तर केरल के लोहार बौद्ध योद्धा, जो कलरीपयट्टु का अभ्यास करते थे, प्रारंभिक औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे वर्थेमा, लोगन और वाइटोवे के लेखन से पता चलता है कि कलरीपयट्टु केरल के लगभग सभी जाति, लिंग और संप्रदायों के लोगों में अच्छी तरह से स्थापित थी। कहा जाता है कि ये अंततः पढ़ने और लिखने की तरह ही प्रचलित हो गया था। कुछ महान परिवारों में युवा लड़कियों को भी मासिक धर्म के शुरू होने तक इसका प्रारंभिक प्रशिक्षण मिलता था। एक गाथा गीत वदक्कन तो कल से भी ये पता लगता है कि प्रसिद्ध चेकवारों की कम से कम कुछ महिलाएं इसका अभ्यास करती रहीं। और इसमें ऊंची विशेषज्ञता हासिल कर पाई। उनमें से सबसे प्रसिद्ध केरल के लोकगीत की उन्नी अर्चा थी, वो उरुमी या लचीली तलवार की निपुण योद्धा थी। कलरीपयट्टु का सबसे पहला पश्चिमी उल्लेख पुर्तगाली अन्वेषक बर्बोसा दुराते का है। वो कहते हैं, इन योद्धाओं में से अधिकतर को तभी स्कूल में भेज दिया जाता है जब वे 7 साल की उम्र के होते हैं, जहां उन्हें फुर्ती और कौशल के कई गुण सिखाए जाते हैं। वहां वे उन्हें नृत्य करना, पलटना और जमीन पर विभिन्न प्रकार के घुमाव लेना, शाही छलांग लेना, दूसरी अन्य तरह की छलांगें लगाना सिखाते हैं। और जब तक ये बच्चे होते हैं, ये इसे दिन में 2 बार सीखते हैं। इस प्रकार वे इतने शिथिल जोड़ वाले व लचीले हो जाते हैं कि उनका शरीर प्रकृति के विपरीत मोड़े जाने में सक्षम हो जाता है। और जब ये इसमें पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वे इन्हें हथियारों को चलाना सिखाते हैं, जिसके कि वे सर्वाधिक इच्छुक होते हैं। कुछ तीर धनुष के साथ तो कुछ लाठी और भाले के योद्धा बनने के लिए लाठियों के साथ, लेकिन अधिकतर तलवार और ढाल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अधिकतर तलवार और ढाल के साथ इन सीमाओं के भीतर लगातार अभ्यास करते रहते हैं। जो गुर उन्हें ये सिखाते हैं, उन्हें पढ़कर कहा जाता है। कलरीपयट्टु की कई शैलियां हैं, जिन्हें 3 क्षेत्रीय स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 3 मुख्य विचार शैलियां अपने पर हमला करने और रक्षात्मक तरीकों से पहचानी जाती हैं। इन शैलियों के बीच अंतर का परिचय जानने के लिए कई सारे लोगों ने कई सारे प्रयोग किए हैं। कई सारी किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। उत्तरी कलरीपयट्टु का मुख्य रूप से उत्तर मालाबार में अभ्यास किया जाता है। ये खाली हाथों की अपेक्षा हथियारों पर अधिक बल देता है। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार को इस शैली की मौखिक व लिखित दोनों परंपराओं का संस्थापक माना जाता है। इस प्रणाली में गुरुओं को गुरुकल या कभी कभी असन कहा जाता है, और अक्सर सम्मानीय उपाधियां दी जाती थी, विशेष रूप से पड़िकर। अब आती है उत्तरीय शैली। उत्तरीय शैली को इसके मेईपयट्टु शारीरिक प्रशिक्षण और पूरे शरीर की तेल की मालिश से पहचाना जाता है। उपचार की प्रणाली और मालिश और अभ्यास के बारे में मान्यताएं काफी ज्यादा है। आयुर्वेद से निकट जुड़ा हुआ भी इसे माना जाता है। औषधीय तेल मालिश का प्रयोजन अभ्यास करने वालों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए है। अभ्यास के दौरान लगी मांसपेशियों की चोटों के इलाज के लिए, जब रोगी को हड्डी के ऊतकों से जुड़ी, मांसपेशियों से जुड़ी या तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या हो, तो उसके लिए है तेल मालिश। इस तरह की मालिश के लिए थिरुमल शब्द है, और शारीरिक लचीलेपन के लिए की जाने वाली मालिश को चावुट्टी थिरुमल कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोहर मालिश या पैरों की मालिश। मालिश करने वाले मालिश के लिए अपने पैर और शरीर के वजन का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारी प्रजातियां शैलियां हैं, जिनमें से थुलुनादन सबसे अच्छा माना जाता है। प्राचीन समय में छात्र अपने दोषों पर काबू पाने के लिए थुलुनाद कलारी करते थे। कई विद्यालयों में इनमें से 1 से अधिक परंपराओं को सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए कन्नूर के आसपास के कुछ परंपरागत कलारी पिल्लातानी, अरुपक्कई और कतादानाथ शैलियों का एक मिश्रण सिखाते हैं। दक्षिणी कलरीपयट्टु का मुख्य रूप से नायर और नादर के द्वारा मुख्यतः पुराने त्रावणकोर में अभ्यास किया जाता था, जिसमें तमिलनाडु का वर्तमान कन्याकुमारी जिला शामिल है। खाली हाथ तकनीक पर जोर देते हुए ये तमिल सिलाम्बम और श्रीलंका के अंगमपोर से काफी नजदीकी से जुड़ा है। इसके संस्थापक और संरक्षक संत परशुराम की जगह ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। गुरुओं को यहाँ भी असान के नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण के चरण इस प्रकार हैं कि चुवातु एकल रूप है, जोड़ी साथी के साथ प्रशिक्षण या मल्युद्ध। फिर आता है कुरुंथादी यानी छोटी छड़ी, नेदुआदी यानी लंबी छड़ी, कट्ठी यानी कि चाकू, कटारा यानी कटार, वलुम परिचयुम यानी तलवार और ढाल। फिर आता है चित्तोवल यानी लचीली तलवार, फिर दोहरी तलवार, कलारी कुश्ती और मर्म, मर्म यानी कि दबाव पिंड। जरिल्ली दक्षिण कलरीपयट्टु को वर्म यानी चोट पहुंचाने का नियम, मर्म यानी महत्वपूर्ण जगहों पर चोट करना, या वर्म कलारी, कलारी की कला कहते हैं। प्राथमिक खाली हाथ की वर्म अति तकनीकों को खाली अतिथाडा यानी चोट की रक्षा करना और चोट पहुंचाने के नाम से जाना जाता है। मर्म अति विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर इन तकनीकों के इस्तेमाल को बताया जाता है। हथियारों में बांस का बल्लम, छोटी छड़ी और हिरन की दोहरी सींगे शामिल हैं। दक्षिणी शैली में चिकित्सा उपचार को सिद्ध कहा गया है। ये पारंपरिक द्रविड़ चिकित्सा की व्यवस्था है जो उत्तर भारतीय आयुर्वेद से भिन्न है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली जो सिद्ध वैद्यम के रूप में भी जानी जाती है, अगस्त की देन मानी जाती है। फिर आता है तीसरी शैली, केंद्रीय कलारीपयट्टू। इसका अभ्यास मुख्यतः केरल के कोझिकोड, मल्लपुरम, पालक्काड, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिले के कुछ भागों में होता है। ये दक्षिणी और उत्तरी शैली का संगम है, जिसमें शामिल है उत्तरी मेपयत्तु की प्रारंभिक कसरतें, दक्षिणी महत्व की खाली हाथ की चालें तथा इसकी अपनी फर्श पर की जाने वाली विशिष्ट तकनीकें, जिन्हें कलम के नाम से जाना जाता है। वदक्कन पत्तुकल में निर्दिष्ट कलारी की विभिन्न शैलियां कुछ इस प्रकार हैं, जिनका मैं नाम दोहरा रही हूँ। करवंचेरी कलारी, कोदुमाला कलारी, कोलास्त्री नाडु कलारी, कुरनगोद कलारी, मथिलुर कलारी, मायाजही कलारी, मेलूर कलारी, नादापुरम कलारी, पनूर मधम कलारी, पयमपल्ली कलारी, ओन्नियम कलारी, पुथुसिरी कलारी, पुथुरम कलारी, थाचोरी कलारी, थोतुमोर कलारी और तुलुनादन कलारी। छात्रों के प्रशिक्षण की शुरुआत लगभग 7 वर्ष की उम्र में होती है, जिसमें गुरुकुल द्वारा औपचारिक दीक्षा रीति की जाती है। नए सत्र के उद्घाटन के दिन एक नौसिखिए को गुरुकुल या एक वरिष्ठ छात्र की उपस्थिति में कलारी में भर्ती किया जाता है और उन्हें चौखट के आर पार दाहिने पैर को रखने का निर्देश दिया जाता है। छात्र दाहिने हाथ से मैदान को छूता है और फिर सम्मान की निशानी के रूप में माथे पर लगाता है। उसे फिर गुरुधारा की ओर ले जाया जाता है, जहां एक दीपक कलारी के सभी गुरुओं का सम्मान में जलाकर रखा जाता है। इस पूजा की विधि को दोहराने के लिए फिर वह गुरुओं को पान के पत्ते में रख दिया जाता है। दक्षिणा स्वरूप कुछ धन पेश करते हैं और दंडवत होकर गुरु का पैर छूते हैं, जो समर्पण का द्योतक होता है, और फिर गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। ये अनुष्ठान जमीन छूना, पुत्रा, गुरुधारा और गुरु के पैर छूना हर रोज दोहराया जाता है। ये देवा कलारी और इस कला में पूर्ण समर्पण और गुरु की स्वीकृति का प्रतीक है। कलारी प्रशिक्षण आमतौर पर 7 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। जाहिर तौर पर ये वो समय होता है जब शरीर में सीखने की क्षमता और ताकत सबसे ज्यादा होती है। ये उम्र कच्ची मिट्टी के जैसे होती है। इस उम्र में अगर बच्चे को सही से ढाला जाए तो वो कलारीपयट्टू में महारत हासिल कर सकता है। हालांकि इस कला को गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कलारीपयट्टू की ताकत को पहचाना है और इस कला को सीखा है। आपको वो फिल्म याद है, बागी। फिल्म बागी में टाइगर श्रॉफ ने खास तौर पर कलारी की ट्रेनिंग ली थी। वहीं अभिनेता विद्युत जामवाल ने 3 साल की उम्र से इस कला को सीखना शुरू कर दिया था। फिर भी फिल्म कमांडो के लिए उन्होंने इसकी खास ट्रेनिंग अलग से भी ली थी। कलारीपयट्टू को 4 चरणों में सीखा जाता है, जो मेयतारी, कोलतारी, अंगतारी और वेरुमकाई है। कलारीपयट्टू को सीखने के लिए चरणों के क्रम में साथ ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजाओं के लिए युद्ध लड़ने वाले योद्धा कलारीपयट्टू में पूरी तरह से पारंगत होते थे। प्रत्येक अभ्यास के साथ जुड़े विशिष्ट आवाहन को वयतरी कहा जाता है। एक बार छात्र शारीरिक रूप से सक्षम हो जाए तो उनका परिचय लकड़ी के लंबे हथियारों के साथ युद्ध के लिए होता है। पहले सिखाया जाने वाला हथियार बल्लम केतुकारी है, जो आम तौर पर लंबाई में 5 फीट या जमीन से छात्र के माथे जितना लंबा होता है। दूसरा हथियार जो सिखाया जाता है वो चेरुवादी या मुचन है, जो एक 3 बालिश्त लगभग 2.5 फीट या 75 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरा सिखाया जाने वाला हथियार ओट्टा है, जो हाथी की सूंड से दिखने वाली लकड़ी की मुड़ी हुई छड़ी होता है। ऐसे कई सारे हथियार हैं जिनका प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण का कुल क्रम 18 होता है। सभी हथियारों में महारत हासिल करने के बाद अभ्यासकर्ता को नंगे हाथ से स्वयं की रक्षा करने की तकनीकों को सिखाया जाता है। इसमें शामिल है बांजू बांध, जूझना और दबाव बिंदु पर चोट यानी मर्मम। इसे सबसे उन्नत युद्ध कौशल माना जाता है। कलारीपयट्टू की तकनीक अताव में पद और मुद्राओं का संयोजन है। कुल 5 पद हैं और उत्तरी शैलियों में 10 मुद्राएं, जिसे अष्ट वादी वकुल कहा जाता है। प्रत्येक पद का अपना शक्ति संयोजन कार्य और तकनीकों का समूह है। सभी आठ मुद्राएं जानवरों पर आधारित है। हालांकि अब अभ्यास सत्र में इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हथियार कलारी पयट्टू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उत्तरी शैली के लिए विशेष रूप से सच है, जो ज्यादातर हथियार आधारित है। कुछ मध्ययुगीन संगम साहित्य में वर्णित है कि ये सभी हथियार अब अप्रचलित हो गए हैं और कलारी पयट्टू में अब बहुत कम सिखाए जाते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जहां पर कुछ बच्चे दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू में महारत हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद वो शख्स भी खूब चर्चा में रहे, जिन्होंने इन बच्चों को इस विधा में ट्रेनिंग दी है। आज के समय में कलारी पयट्टू को लेकर युवाओं और खासकर बच्चों में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। हालांकि इसे सिखाते समय ट्रेनर को काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे अभ्यास के दौरान बच्चों को चोट से बचाया जा सके। हरे कृष्णन के अनुसार अगर इस कला को युद्ध में इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी आसानी से किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। हरे कृष्णन ने मीडिया को बताया कि वे भी यह सुनिश्चित करते हैं कि इस कला को किसी गलत इंसान को नहीं सिखा रहे हैं, जिससे भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बड़ी मुश्किल ना हो। बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल का कहना है कि वो भारतीय सिनेमा के माध्यम से स्वदेशी मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। विद्युत एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट है और उन्होंने 3 साल की उम्र से कलारी पयट्टू सीखा है। उन्होंने बताया कि उनके पास फिलहाल अभी तक इसे लेकर कोई आइडिया नहीं है कि कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय सिनेमा के प्रति उनका नजरिया ये है कि लोगों को मार्शल आर्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मार्शल आर्ट को चुस्ती और फूर्ती का दूसरा नाम कहा जाता है। मार्शल आर्ट आपको एक्टिव बनाती है। माना जाता रहा है कि इस कला के लिए शरीर का युवा होना आवश्यक होता है, पर केरल की मीनाक्षी अम्मा ने ऐसी सभी धारणाओं को तोड़ते हुए दुनिया के सामने नई मिसाल पेश की है। मीनाक्षी अम्मा कई वर्षों से भारत के सबसे पुराने कलारी पयट्टू युद्ध कौशल की कला निःशुल्क रूप से बच्चों को सिखा रही है। करीब 78 साल की उम्र में जब लोगों के लिए चलना और उठना काफी मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में मीनाक्षी अम्मा देश की अगली पीढ़ी को मार्शल आर्ट के गुण सिखा रही हैं। भारत के सबसे पुराने कलारी पयट्टू युद्ध कौशल को आगे ले जाने और बच्चों को निःशुल्क इस कला को सिखाने के उनके जज्बे को देखते हुए साल 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। मीनाक्षी अम्मा इस कला को खुद 5 साल की उम्र से सीख रही हैं और वो अभी एक स्कूल शुरू की है, जिससे वो लोगों को सिखा भी रही हैं। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को उन्होंने कलारी पयट्टू की ये विधा सिखाई है, जिससे वे उनको आत्मरक्षा के गुर सिखा सके। ये उनकी आत्मरक्षा में मदद कर सकता है। मीनाक्षी ने सभी को मुफ्त में इसलिए शिक्षा दी जिससे बच्चियां बेझिझक खुद आत्मविश्वास को बढ़ा सके। मुख्यतः कलारी पयट्टू या कलारी युद्ध उपचार और मार्मा थेरेपी का विज्ञान है, जो इतिहासकारों द्वारा दुनिया में सबसे पुराने मौजूदा मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। भारत में शुरू हुई मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू में स्ट्राइक, किक्स, ग्रैपलिंग, प्रीसेट फॉर्म, हथियार और उपचार विधियां शामिल है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपकी बॉडी को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, मजबूत बनाता है और आप काफी ज्यादा एक्टिव बनते हैं। खूब तेज और फुर्तीले मूव्स आप कर पाते हैं। आप आलस कम होता है और आपकी बुद्धि तत्परता भी बढ़ती है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह और विरोधी औपनिवेशिक भावनाओं को रोकने के लिए कलारी पयट्टू और तलवार धारण करने की नायरों की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान कई भारतीय युद्ध कलाओं का गुप्त रूप से अभ्यास किया जाने लगा, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। उसके बाद कलारी पयट्टू में सार्वजनिक रुचि का पुनरुत्थान तेलुचेरी में 1920 के दशक में संपूर्ण दक्षिण भारत में पारंपरिक कलाओं के पुनराविष्कार की लहर के रूप में शुरू हुआ और 1970 तक दुनिया भर में युद्ध कला में रुचि के बढ़ने तक कंटिन्यू चलता रहा। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों जैसे इंडियन, अशोका, द मिथ, द लास्ट लीजन, विद्युत जामवाल की जंगली, कमांडो और जापानी मंगा श्रृंखला में इसमें शामिल होने के साथ साथ इस कला को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। हमें आजकल अगस्त्य प्रणाली के अच्छे शिक्षक मिल नहीं रहे, इसीलिए हम परशुराम प्रणाली को अपना रहे हैं। लेकिन हमें आशा है कि हम उस प्रणाली को भी धीरे धीरे विकसित कर लेंगे, ताकि कुछ समय बाद हम अगस्त्य मुनि को सम्मानित करने के लिए उनकी प्रणाली को अपना सके। ये मानवता के प्रति योगदान के लिए कृतज्ञता जताने का एक तरीका होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अद्भुत है और हम भी ये कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। हम एक दूसरे के साथ मिल करके इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज के सांझे विरासत एपिसोड में कलरी पयट्टू के ऊपर एक विशिष्ट जानकारी। आशा है कि कलरी पयट्टू और ऐसे कई सारे ड्राइंग आर्ट फॉर्म के बारे में हम आपसे ढेर सारी चर्चा करेंगे और ये आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।